रोमियो के नाम पत्र, या जिसे आमतौर पर रोमन्स कहा जाता है, मतलब इतिहास का एक ऐसा दस्तावेज जिसने मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली जैसे लोगों का पूरा जीवन ही बदल दिया।
जब हम इन ऐतिहासिक स्रोतों की इस गहन चर्चा में उतरते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है।
हाँ बिल्कुल।
लोग अक्सर मान लेते हैं कि ऐसे धार्मिक ग्रंथ किसी साधु ने, मतलब किसी शांत गुफा में बैठकर या किसी रहस्यमयी प्रेरणा से लिखे होंगे, लेकिन जब डॉक्टर क्रेग कीनर के इस पत्र पर दिए गए विश्लेषण को गहराई से देखते हैं तो ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं लगता।
एकदम सही कह रही हैं। और इस पूरी चर्चा का मकसद भी यही है कि हम ये समझें कि ये कोई आसमान से उतरी हुई किताब नहीं थी, मतलब इसे कभी भी इस इरादे से नहीं लिखा गया था कि लोग सदियों बाद किसी एयर कंडीशन्ड लाइब्रेरी में बैठकर इसे आराम से पढ़ें।
हाँ वो तो है।
यह पत्र असली लोगों की बहुत ही जमीनी और जटिल समस्याओं को सुलझाने की एक हताश कोशिश थी। भारी सांस्कृतिक तनावों के बीच से निकली एक ऐसी रचना जिसे उस दौर का मास्टरपीस कहा जा सकता है।
तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। इसके ऐतिहासिक प्रभाव से हटकर जरा इसकी भौतिक वास्तविकता पर बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हम इसके पीछे की जो इंसानी मेहनत है उसे भूल जाते हैं। ये कोई ऐसा पत्र नहीं था जो रात में बैठे और चंद घंटों में लिख दिया।
बिल्कुल नहीं।
इसके आकार और लागत के जो आंकड़े डॉक्टर कीनन ने दिए हैं, मतलब वो सचमुच हैरान करने वाले हैं।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राचीन काल में पत्राचार होता कैसे था। उस दौर में पेपायरस पर लिखे जाने वाले आम पत्रों में औसतन केवल 87 शब्द होते थे।
सिर्फ 87?
हाँ, और अगर हम उस समय के बहुत पढ़े लिखे एलीट लोगों की बात करें, जैसे रोमन वक्ता सिसरो, तो उनके पत्रों में औसतन 295 शब्द होते थे। दार्शनिक सेनेका के पत्रों में लगभग 995 शब्द थे, जो उस समय बहुत लंबे माने जाते थे। लेकिन जब पॉल के रोमियो के पत्र की बात आती है तो उसमें 7114 शब्द हैं।
7000 से ज्यादा शब्द? बाप रे, मतलब ये तो उस समय के हिसाब से एक पूरी किताब हो गई। ये किसी दोस्त को भेजा गया कैजुअल ईमेल या हालचाल वाला संदेश नहीं है।
एकदम नहीं।
ये तो आज के समय में अपनी जेब से हजारों डॉलर खर्च करके एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूस करने जैसा है। कोई भी व्यक्ति इतना पैसा और समय तब तक नहीं लगाएगा जब तक बात बहुत बड़ी ना हो।
बिल्कुल। और आप इसके पीछे की मेहनत की कल्पना कीजिए। पॉल ने इसे खुद अपने हाथों से नहीं लिखा था, उन्होंने इसे टर्टियस नाम के एक व्यक्ति को बोलकर यानी डिक्टेट करके लिखवाया था।
अच्छा, तो टर्टियस लिख रहे थे।
हाँ, और एक अनुमान के मुताबिक इतने बड़े पत्र को लगातार डिक्टेट करने में कम से कम 11 घंटे लगे होंगे, और क्योंकि इसमें बहुत भारी दार्शनिक तर्क थे तो यह पक्का है कि इसके कई ड्राफ्ट बने होंगे। बिना बैकस्पेस या डिलीट बटन वाले उस युग में अगर हम पपायरस की कीमत और लेखक की मजदूरी जोड़ें तो इसकी लागत करीब 20.68 दिनारी रही होगी।
20 दिनारी, जिसका मतलब है आज के हिसाब से यह करीब $2275 के बराबर है। यह एक बहुत भारी निवेश है।
हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि डॉक्टर कीनर बताते हैं कि ये कोई सामान्य पत्र था ही नहीं। आम पपायरस पत्रों में व्यापार या परिवार की बातें होती थीं, लेकिन रोमियो के पत्र में किसी सार्वजनिक भाषण की तरह स्पष्ट थीसिस, नैरेटिव और सबूतों के साथ लंबे तर्क दिए गए थे।
मतलब यह एक बहुत ही रणनीतिक रचना थी, और अगर कोई दस्तावेज इतना महंगा है तो जाहिर है उसमें इस्तेमाल किया गया हर एक शब्द बहुत कीमती होगा। कोई भी फालतू शब्दों पर हजारों डॉलर खर्च नहीं करेगा, है ना?
बिल्कुल सही बात है।
और शायद यही कारण है कि इस पत्र की बिल्कुल शुरुआत में जो साधारण से लगने वाले अभिवादन के शब्द हैं, उनमें भी बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं।
एकदम सटीक विश्लेषण है ये। पॉल ने शुरुआत ही बहुत क्रांतिकारी तरीके से की थी। उस समय यूनानी संस्कृति में आम अभिवादन काइरीन हुआ करता था।
काइरीन, जिसका मतलब नमस्ते होता है।
हाँ, सामान्य नमस्ते। लेकिन पॉल ने इस शब्द को थोड़ा सा बदलकर कैरिस कर दिया, जिसका अर्थ है अनुग्रह या ग्रेस।
और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ठीक बाद उन्होंने पारंपरिक यहूदी अभिवादन शालोम यानी शांति का यूनानी रूप जोड़ दिया।
अरे वाह, ये तो बहुत चतुराई भरा कदम है। मतलब उन्होंने एक ही वाक्य में यूनानी और यहूदी दोनों संस्कृतियों के सबसे अहम शब्दों को मिला दिया, अनुग्रह और शांति।
बिल्कुल, वो पहली पंक्ति से ही दो अलग दुनियाओं को जोड़ रहे थे।
और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्राचीन पत्रों में शुरुआत में देवताओं का आशीर्वाद दिया जाता था, पॉल लिखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले।
अच्छा, तो ये एक प्रार्थना जैसी थी?
हाँ, ये एक विश प्रेयर थी। यीशु मसीह को परमेश्वर के साथ एक ही स्तर पर रखकर पॉल बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये स्थापित कर रहे थे कि यीशु ईश्वरीय हैं। डॉक्टर कीनर इसे समझाने के लिए रेलेवेंस थ्योरी का जिक्र करते हैं।
रेलेवेंस थ्योरी, ये तो वही बात है ना जिसमें हम अनकही बातों को संदर्भ से समझ जाते हैं। जैसे अगर आज कोई सिर्फ 9/11 कहता है तो उसे पूरी कहानी नहीं सुनानी पड़ती, सुनने वाला तुरंत समझ जाता है।
बिल्कुल।
या जैसे कैफे में जाके सिर्फ कॉफी प्लीज कहना।
उसी तरह रोम के लोगों के साथ पॉल की एक साझा संस्कृति थी, इसलिए वो कई बातें शॉर्ट हैंड में कह रहे थे।
एकदम सही,
उन्हें इशारे समझने के लिए लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं थी।
लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है, अगर पॉल की बातें उस समय के लोगों के लिए शॉर्ट हैंड या इशारे थीं जिन्हें वही समझ सकते थे, तो क्या आज हम अनजाने में उनका कुछ और ही मतलब नहीं निकाल लेते? मतलब 2000 साल बाद बिना उस संदर्भ को जाने, ये तो खतरनाक हो सकता है ना?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यही कारण है कि डॉक्टर कीनर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने पर इतना जोर देते हैं। प्राचीन संस्कृति को समझने से ही हम तय कर पाते हैं कि क्या सार्वभौमिक सत्य है जो हमेशा लागू होता है, और क्या केवल उसी समय की संस्कृति का हिस्सा था।
अच्छा, तो हमें हर निर्देश को उस दौर के चश्मे से देखना होगा। जैसे अगर हम सार्वभौमिक और सांस्कृतिक नियमों को देखें तो लालच या अनैतिकता का विरोध करना ये तो हमेशा के लिए है।
बिल्कुल, वो सार्वभौमिक है।
लेकिन कुछ चीजें पूरी तरह से उस समाज पर निर्भर थी, जैसे एफिसस की संस्कृति में महिलाओं का घर पर रहना।
हाँ, अगर हम पहला तीमुथियुस देखें तो वहाँ महिलाओं के घर पर रहने की बात है, क्योंकि वो एफिसस शहर की विशिष्ट संस्कृति थी। लेकिन अगर हम पुराने नियम में नीति वचन अध्याय 31 को देखें तो वहाँ महिलाएं घर के बाहर व्यापार कर रही हैं, संपत्तियां खरीद रही हैं।
हाँ हाँ, ये तो स्पष्ट रूप से एक सांस्कृतिक अंतर है।
बिल्कुल, और इसीलिए पॉल का तर्क देने का तरीका भी जटिल था। वे सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे थे, वे प्राचीन भाषण कला का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे रिडक्टिव एड एब्सर्डम तकनीक।
मतलब अपने प्रतिद्वंद्वी के तर्क को इतना खींचना कि वो बेतुका साबित हो जाए।
हाँ, रोमियो अध्याय 2 में पॉल यहूदियों पर व्यंग करते हुए पूछते हैं कि तुम जो मूर्तियों से घृणा करते हो, क्या तुम ही मंदिरों को लूटते हो? अब सच्चाई ये है कि उस समय ज्यादातर यहूदी मंदिरों को बिल्कुल नहीं लूटते थे।
तो वो जानबूझकर एक अतिशोक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे।
बिल्कुल, वो साबित करना चाहते थे कि केवल नियम जानने से कोई नैतिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाता, और यहीं पर प्रथम शताब्दी के यहूदी धर्म को लेकर वो पुरानी ऐतिहासिक बहस आती है कि कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है।
अच्छा, ये बहुत अहम विषय है।
हाँ, डॉक्टर कीनर यहाँ विद्वान ईपी सैंडर्स का हवाला देते हैं। सैंडर्स ने साबित किया कि प्रथम शताब्दी के यहूदी धर्म में केवल कठोर नियम नहीं थे, बल्कि उसमें अनुग्रह या ग्रेस का भी बहुत बड़ा स्थान था।
ये तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार है, क्योंकि अक्सर यही माना जाता था कि यहूदी धर्म सिर्फ कठोर नियमों में जकड़ा हुआ था और ईसाइयत ने आके अनुग्रह का विचार दिया। ये गलतफहमी इतनी फैली कैसे?
इसके पीछे 20वीं सदी की राजनीति थी। डॉक्टर कीनर निष्पक्ष रूप से बताते हैं कि होलोकास्ट के बाद यह सामने आया कि गेरहार्ड किटल जैसे कुछ जर्मन विद्वानों ने यहूदी धर्म की बहुत ही नकारात्मक छवि पेश की थी। किटल एक बहुत प्रभावशाली विद्वान थे, लेकिन वो नाजी पार्टी के समर्थक भी थे।
बाप रे!
मतलब उनकी राजनीतिक विचारधारा ने उनके अकादमिक काम को पूरी तरह दूषित कर दिया था।
हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन ये रिपोर्ट करना जरूरी है कि कैसे इतिहास को मोड़ा गया।
एकदम सही, ऐसे विद्वानों ने जानबूझकर यहूदी धर्म को पूरी तरह नियम आधारित बताकर पेश किया ताकि वो यहूदियों को नीचा दिखा सकें। बाद में सैंडर्स जैसे विद्वानों ने सच्चाई सामने रखी कि प्रारंभिक यहूदी धर्म में भी अनुग्रह मौजूद था, और पॉल उसी यहूदी पृष्ठभूमि से आते थे।
तो इन जटिल तर्कों को देखकर एक बात साफ है कि पॉल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मतलब एक ही पत्र में वो यूनानी दार्शनिकों की तरह बहस कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहूदी रब्बियों की तरह विश्लेषण भी कर रहे हैं।
हाँ, उनका बैकग्राउंड मिला जुला था। वो तरसुस से थे, जो यूनानी दर्शन शास्त्र का केंद्र था, और उन्होंने यरूशलेम में रब्बी गैमलियल से शिक्षा ली थी। वो कोई शाही एलीट नहीं थे, लेकिन एक बहुत चतुर विद्वान थे जो कोइने यूनानी भाषा में, मतलब आम लोगों की भाषा में, गहरी बातें कह सकते थे।
और उन्होंने ये पत्र फीबे नाम की एक महिला के जरिए कॉरिंथ से रोम भिजवाया था। रोम की बात करें तो हमारे दिमाग में तो कोलोसियम और चौड़ी सड़कों की छवि आती है, लेकिन असल रोम बहुत अलग था, है ना?
बहुत अलग। रोम उस समय 10 लाख की आबादी वाला एकदम घोटू भीड़भाड़ वाला शहर था। जो अमीर लोग थे वो इमारतों के निचले हिस्से में रहते थे, लेकिन ज्यादातर गरीब आबादी जिनमें मसीही और यहूदी थे वो बहुमंजिला इमारतों के ऊपरी हिस्से में रहती थी। इन्हें टेनमेंट्स कहा जाता था।
अगर ये इमारतें लकड़ी थीं तो वहां रहना तो बहुत खतरनाक रहा होगा, खासकर जब लोग खाना पकाने के लिए आग जलाते होंगे।
वो एक जीवित बुरा सपना था। रोम में रोज आग लगती थी, इमारतें आए दिन गिर जाती थी। प्राचीन लेखकों ने लिखा है कि इमारतों के ढहने की आवाज रोजमर्रा की बात थी। ये एक तंग बदबूदार जगह थी,
और इसी तंग माहौल में यहूदी और गैर यहूदी मसीही साथ रह रहे थे। और यहूदियों की आबादी तो शायद सिर्फ 5% थी, करीब 40-50 हजार।
हाँ, जो मुख्य रूप से ट्रस्टवेरे इलाके में गरीबी में रहते थे। लेकिन फिर एक बड़ी घटना हुई। सम्राट क्लॉडियस ने सभी यहूदियों को रोम से बाहर निकाल दिया।
अच्छा,
तो जब यहूदी बाहर गए, रोम का चर्च पूरी तरह से गैर यहूदियों के हाथों में आ गया। उन्होंने सालों तक इसे अपनी तरीके से चलाया।
तो जब क्लॉडियस की मौत के बाद यहूदी वापस लौटे तो स्थिति कितनी भयंकर रही होगी। मतलब यहूदी मसीही अपने ही चर्च में वापस आ रहे थे, लेकिन अब वहां की संस्कृति गैर यहूदियों के कब्जे में थी।
बिल्कुल, आप उन तंग टेनमेंट्स की कल्पना कीजिए। एक तरफ यहूदी हैं जो सब्त के दिन आराम करते हैं, कोशर भोजन खाते हैं। दूसरी तरफ गैर यहूदी मसीही हैं जो सब्त के दिन काम कर रहे हैं, सुअर का मांस पका रहे हैं, जिसकी महक पूरी इमारत में फैल रही है।
बाप रे, ये तो दैनिक टकराव था।
हाँ,
खान पान और रीति रिवाजों को लेकर।
हाँ, वो एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे, बहुत कड़वाहट थी।
तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब इस पूरी चर्चा ने रोमियो के पत्र को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। ये कोई अमूर्त आध्यात्मिक किताब नहीं थी।
बिल्कुल नहीं,
ये एक ऐसे शहर के लिए लिखी गई थी जहाँ रोज आग लगती थी, जो शोर शराबे से भरा था और जहाँ का समुदाय सांस्कृतिक तनावों के कारण फटने वाला था। पॉल अपनी पूरी बौद्धिक ताकत लगाकर 11 घंटे डिक्टेट करके इस बटे हुए समुदाय को जोड़ने की एक हताश कोशिश कर रहे थे।
यही डॉक्टर कीनर के विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। रोमियो का पत्र खून पसीने और भारी संघर्षों के बीच पैदा हुआ था। इसका हर तर्क एक जमीनी समस्या सुलझाने के लिए था।
और यही बात एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। एक दस्तावेज जो प्रथम शताब्दी के रोम की बहुत ही विशिष्ट समस्याओं, मतलब यहूदी गैर यहूदी तनाव और सब्त के नियमों को सुलझाने के लिए तैयार किया गया था, उसी पत्र ने 1500 साल बाद लूथर और वेस्ली जैसों की आत्मा को इतनी गहराई से कैसे झकझोर दिया?
ये सोचने वाली बात है।
मुझे लगता है शायद इस महान ग्रंथ की असली ताकत इसके सिर्फ आसमानी होने में नहीं है। इसकी असली ताकत इसमें है कि ये उस समय के मिट्टी, पसीने और इंसानी कमजोरियों की सच्चाई में रंगा हुआ था, और शायद इसीलिए ये समय की सीमाओं को पार कर पाया।
बिल्कुल सही।
खैर, आज के लिए इतना ही। उन प्राचीन पन्नों के पीछे छिपे असली इंसानी चेहरों को खोजने का यह सिलसिला सचमुच बहुत दिलचस्प है।